तारीख 12 जनवरी दिन रविवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दास। आज होगी खास पेशकश।
बीबीसी हिंदी सेवा के श्रोताओं को ममता गुप्ता का नमस्कार।
रेडियो की जानी मानी आवाजों के साथ
इस यात्रा में मेरे साथ हैं आपकी चिर परिचित आवाजें विजय राणा, शिवकांत और ललित मोहन जोशी।
ले चलेंगे आपको पुरानी बातों, पुरानी यादों और पुराने किस्सों के सफर पर।
हमने वो समय भी देखा है जब हिंदी सेवा के 4 करोड़ श्रोता हुआ करते थे। वो पत्रों का जमाना था,
श्रोताओं की ताकत थी उस वक्त। तो वो असली हमारी जो है वो कसौटी होता था कि हमारा कार्यक्रम सही था, निष्पक्ष था, जिन मानदंडों पर हम कार्यक्रम बनाना चाहते थे उस पर खरा उतरा कि नहीं उतरा, अंततः श्रोता तय करता था।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के आज दूसरे दिन बेलूर मठ का दौरा किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छात्रों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार का पक्ष रखा और इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है।
वहीं जबलपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर की गई एक जन जागरूकता रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 4 महीनों में गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सिब्बल को चुनौती देते हुए कहा कि जितना दम हो रोक लो, 4 महीने में आसमान को चूमते हुए राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के उप विदेश मंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। शहरयार आलम ने एक कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया। बीते एक महीने में ये बांग्लादेश के किसी चौथे बड़े शख्स का कार्यक्रम रद्द हुआ है। बीजेपी सरकार का कहना है कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हुई ज्यादती के कारण उन्हें नागरिकता दे रहा है। बांग्लादेश इस बात से नाखुश है। उसका कहना है कि उसके यहाँ किसी अल्पसंख्यक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यूक्रेन विमान को मार गिराने के मामले में ईरान के नेताओं पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का दबाव बन रहा है। ईरान के कई अखबारों ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शनों को कवर किया है। अखबारों ने शर्म की बात और माफ न करने वाला जैसे शीर्षकों से हेडलाइन लगाई है। इस दुर्घटना में 176 लोगों की मौत हुई थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दंगा पुलिस को सड़कों पर उतार दिया गया है। कई ऐसे वीडियो ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं जिनमें सुबह को कई प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते दिख रहे हैं। सेना द्वारा यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराने की बात स्वीकार करने के बाद शनिवार को तेहरान और दूसरे शहरों में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड और तेहरान के राजनीतिक विशेषज्ञ मोहम्मद मरांदी का कहना है कि जो भी जिम्मेदार है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा,
We have to see who lied and whether they were lied to or they lied on their own, and we have to see if they were told something false.
हमने देखा है कि किसने झूठ बोला है, और चाहे उनसे झूठ बुलवाया गया हो या उन्होंने खुद बोला है, हमें देखना होगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो झूठे बयानों के लिए क्या मामला बनता है। क्या अब हमें शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की कमेटी की रिपोर्ट मिलने तक इंतजार करना होगा या हमें अमेरिकी हमले के खतरे के खत्म होने तक इंतजार करना होगा? मुझे नहीं पता कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। ये थे तेहरान के राजनीतिक विशेषज्ञ मोहम्मद मरांदी के शब्द, और आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस में नाटकीय रूप से एक ज्वालामुखी से भाप और राख निकलने के बाद प्रशासन ने 8,000 लोगों को इलाके को छोड़ देने का आदेश दिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी का धुआं आसमान में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ रहा है। मनीला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को रोक दिया गया है। फिलीपींस अधिकारियों ने खतरे के स्तर को बढ़ाते हुए चेताया है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में ज्वालामुखी में पूरी तरह से विस्फोट हो सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पहले से विदित है, बीबीसी रेडियो शॉर्टवेव बंद होने वाला है और दिन भर का आखिरी प्रसारण 31 जनवरी 2020 को होना है। बीबीसी के कुछ जाने माने प्रसारक, जिनकी आवाज़ें हमारे पुराने श्रोता ज़रूर पहचान लेंगे, ममता गुप्ता, विजय राणा, शिवकांत और ललित मोहन जोशी, आज बीबीसी में काम करने के दौरान के अपने अनुभव, अपनी पुरानी यादें और कुछ पुराने किस्से आपके साथ साझा कर रहे हैं।
बीबीसी हिंदी सेवा के श्रोताओं को ममता गुप्ता का नमस्कार। कई साल के बाद अवसर मिला है आपसे दो बातें करने का, अपने अनुभवों को आपके साथ बांटने का और भूली बिसरी यादों को ताजा करने का। इस यात्रा में मेरे साथ हैं आपकी चिर परिचित आवाजें विजय राणा, शिवकांत और ललित मोहन जोशी। आप सबका स्वागत है।
धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी।
धन्यवाद ममता जी।
हम अलग अलग वक्त पर बीबीसी हिंदी परिवार में शामिल हुए, तो वो पहला अनुभव कैसा था, हमने बीबीसी को कैसा पाया? विजय भाई।
ममता जी, देखिए सन 82 की बात है और हम उस भारत से आते थे, एक छोटे से शहर से। अंग्रेजी स्कूलों में हम लोग गए नहीं थे, मध्यवर्गीय परिवारों से थे और वो ज़माना था जब चारों तरफ भेदभाव होता था। दिल्ली में किसी यूपी वाले को किसी इंटरव्यू में बुला लेना लगभग असंभव बात थी। तो बीबीसी में आके पहली बार लगा कि यहाँ ना तो जाति, ना धर्म, ना क्लास, ना अंग्रेज़ी, केवल आपकी टैलेंट है जो मायने रखती है। तो एक तो ये अनुभव था कि भारत में ये मान के चलते थे हम उस समय कि यदि आपने जो भी इम्तहान पास के बाद 6-7 साल तो आपको रोड इंस्पेक्टरी करनी पड़ेगी, ये टर्म हुआ करता था
जी।
और दूसरी बात जो थी यहाँ पर, देखिए जब कैलाश बुधवार हमारे अध्यक्ष थे तो उन्होंने सब बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग लिए। मैं PhD करके इलाहाबाद से आया था, शिवकांत PhD के स्टूडेंट थे, अचला शर्मा खुद हिंदी में PhD थी, गौतम सचदेव हमारे जो इस दुनिया में नहीं है वो भी PhD थे। तो बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को उन्होंने एक के बाद एक हिंदी सेवा में जगह दी और ये अनुभव हमें हिंदुस्तान में रह के इसका एहसास नहीं था।
हाँ। शिव, आपका क्या अनुभव रहा?
ममता जी, 86 की बात है, आपको याद हो लीबिया पे हमला हुआ था और लीबिया की तरफ से बदले की कार्रवाई चल रही थी, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था। भारत में लगभग उस वक्त एक तरह की अपेक्षाकृत, आप तुलनात्मक रूप से कहें तो शांति थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए सबसे अचरज की बात ये थी कि एक इतने बड़े विदेश सेवा, कह लीजिए एक तरह से विदेश सेवा होती थी, इतनी बड़ी सेवा, इतने सारे लोग, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा लगता था कि सारा एक परिवार जैसा है, सब लोग बराबरी से बर्ताव करते थे। आते ही कह दिया गया कि सबको आप नाम से बुलाएंगे, चाहे आपसे वो 30 साल बड़े हों, दुगनी ढाई गुनी उम्र के हों या न हों, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके मातहत हों, सब लोग बराबर मतलब एक सा काम करते थे। आपका काम प्रसारक का था, आपका काम एडिटर का था, तो जो भी आपका काम था आप अपना काम करें, और उस काम में एक बड़ी भारी स्वतंत्रता थी। जैसे ये था कि आपको काम दे दिया, आते ही जैसे आपको माइक्रोफोन पे बिठा दिया जाता था और शुरू हो जाते थे, ओंकार जी ने किया मेरे साथ, और उसके बाद अगले ही ट्रांसमिशन के लिए मुझे एक रिपोर्ट बनाने को कह दिया गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने क्या लिखा, सीधा हम ऑन एयर हो गए। तो ये जो विश्वास था, ये विश्वास अपने आप में ताकत था, और मुझे लगता है इस विश्वास की वजह से सब लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते थे। जबकि आम तौर पे जो प्रसारण संस्थाएं या प्रेस होती है उसमें ये एक तरह की रिवायत होती है कि पहले आप नए आदमी पर विश्वास नहीं करेंगे, उसका लिखा हुआ देखेंगे तब वो छपने जाएगा या, तो ये मुझे एक बहुत नई बात लगी।
और ललित, आपका अनुभव क्या रहा?
ममता जी, ये उस दौर की बात है जब भारत में केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, अगर आप मीडिया को देखें तो रेडियो, आकाशवाणी था और दूरदर्शन था
जी।
तो बीबीसी में आना एक तरह का स्वप्न था, और चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो या जनता पार्टी के पावर में पहली बार आने का दौर हो या इंदिरा गांधी की हत्या हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ से सुनते थे और ऐसा लगता था कि किसी टापू से बीबीसी लंदन से एक ऐसा प्रसारण होता है। और चूँकि मैं थोड़ा प्रसारक भी था, आकाशवाणी में भी काम करता था, मेरी विविध तरह की बैकग्राउंड थी, तो मैं जब बीबीसी में पहली बार आया तो जैसा कि विजय जी ने भी कहा, ये उस मैं कहूँगा कि वो एक स्वर्णिम दौर था जब मेरे पहले आप तीनों लोग यहाँ आ चुके थे, और मुझे लगता है कि ये हर तरह के लोग इसमें थे। जैसे विजय जी ने कहा कि अगर आप लें, केवल पत्रकार नहीं थे, नरेश कौशिक थे, जसविंदर जैसे लोग थे, और एकेडमिक्स में जैसे शिव थे, विजय जी थे, और कवि थे, नीलाब उससे पहले आए हुए थे,
बिल्कुल बिल्कुल,
गौतम जी भी एकेडमिक थे। मेरा जो बैकग्राउंड था वो थिएटर का भी था और लेखन का भी था, सिनेमा का भी था, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मेल्टिंग पॉट था, और मुझे लगता है वही वजह थी जिसकी वजह से बीबीसी की एक शैली बनी, उसकी एक उसकी शब्दावली भी थी। और हम लोग भारत से कहते थे कि बीबीसी के प्रसारण जब शुरू होता तो लोग समझ जाते थे कि बीबीसी है।
बिल्कुल, मेरा अनुभव यही है कि यहाँ जब मैं आई तो मुझे लगा हर तरह के लोग हैं, अफ्रीकी हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, 44 भाषाओं में प्रसारण होते थे, तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषाएं सुनाई दे रही हैं, कभी स्वाहिली सुनाई दे रही है, कभी चीनी सुनाई दे रही है, कभी रूसी सुनाई दे रही है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषाओं में हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया जो है सिमट के बीबीसी बुश हाउस में समा गई है, छोटी सी दुनिया है।
मिनी यूनाइटेड नेशंस कहते थे उस जमाने।
अच्छा, हाँ, मिनी यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे बढ़े तो हिंदी सेवा की शायद ये परंपरा थी, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जाते ही आपको माइक्रोफोन थमा दिया और आगे बिठा दिया और अब चलिए प्रसारण कीजिए। पहले पहले आप घबराए भी होंगे, आप शायद नहीं घबराए होंगे क्योंकि आपको आदत थी
माइक्रोफोन की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी घबराएगा नहीं, मैं बिल्कुल घबराया
तो, लेकिन उससे हमारे आत्मविश्वास को बल मिलता था और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता जाता था। और जो एक बहुत अलग चीज़ हमने अनुभव की थी उस समय वो थी काम करने की स्वतंत्रता। जैसे आप कह रहे हैं कि बस आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी गई, ये आप कार्यक्रम को करना है और उस कार्यक्रम को आप कैसे रोचक बनाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप पूरे नियमों का और यहाँ के चलन का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये काम करने का जो परिवेश है जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया था, वो आपने कैसा पाया शिव?
देखिए, एक बाद में पता चला, शुरू में तो मुझे लगा कि शायद भूल हो गई होगी कि आते ही मुझसे काम कराना शुरू कर दिया और 3 और 4 महीने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा गया, लेकिन मुझे लगता है ये शैली थी, ये एक सुनियोजित परंपरा थी यहाँ की बनी हुई कि पहले आप आएं और आपको लिया ही इसलिए जाता था, खोज परख पहले हो लेती थी कि आप कहाँ हैं, किस विचारधारा से हैं, कैसा लिखते हैं, आपकी भाषा और अदायगी, जिसकी ललित ने बात की, भाषा और अदायगी की वजह से भी बीबीसी जाना जाता था, पत्रकारिता की वजह से जाना ही जाता था, तटस्थता, निर्भीकता, स्पष्टता, सटीकता, ये जो 4 मंत्र थे, ये मंत्र तब भी थे, अब भी हैं, और मुझे लगता है जब तक बीबीसी रहेगा तब रहेंगे, तो ये सब तो था। लेकिन उसके लिए पहले से आपको काम में झोंका जाता था और आप काम करते थे, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते थे, और तो ये एक परंपरा मुझे अच्छी लगी,
बहुत अच्छी। और विजय भाई, आपका अनुभव ये रहा कि थोड़ा सा भारत में जिस तरह का माहौल है विभागों का या कार्यालयों का, वो यहाँ बहुत अलग है?
जी, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी, जो हमारे जो दो वरिष्ठ साथी थे, हमारे बॉसेस जो उस जमाने थे, कैलाश जी और ओंकार जी, एक बहुत खूबसूरत इंसान थे, कैलाश जी तो आज भी हैं, उनका स्वास्थ्य ईश्वर रखे कि बहुत लंबे समय तक हमारा साथ, हमारा मार्गदर्शन कर सके। सबसे बड़ी बात थी बीबीसी की भाषा, जिसकी बहुत चर्चा होती थी, और उसमें हमारे, मैं कह सकता हूँ कि मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है, उसमें दोनों परंपराएँ थी हिंदी की, प्रसाद की भी और प्रेमचंद की भी। कैलाश जी संस्कृतनिष्ठ हिंदी का के अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे और ओंकार जी प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व करते थे।
हाँ, हाँ,
और उससे हमें जो नए लोग होते थे उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था। दूसरी बात ये थी कि बीबीसी का जो इंटरनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था
जी। वो और ललित, आपका क्या अनुभव रहा इस परिवेश को लेकर, कि क्या क्या आपको अलग लगा?
मुझे लगता है कि बीबीसी में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तो जैसे शिव जी ने कहा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर के इंडिविजुअल जो जो प्रसारक है उसकी भी अहमियत, उसको ये महसूस कराया जाता था कि आप अपने तरह से जैसे चाहें अपने स्टाइल को विकसित करें, शैली को विकसित करें, तो एक तरह से आप को स्वतंत्रता थी, पर जो आज़ादी थी वही आपका प्रतिबंध भी था।
हाँ।
मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं पहला रेडियो न्यूज़ रील प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा था और ये कहा जाता था कि भाई ये आप अपना खुद तय करेंगे कि आप किससे लीड करेंगे। तो करीब मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास डेविड पेज मेरे पीछे आ गए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं हिंदी में कहूँगा, कहने लगे भाई कैसा चल रहा है, तुम क्या ले रहे हो, तो किससे लीड करोगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मान लीजिए मैं पाकिस्तान से लीड करूँगा। तो उन्होंने कहा हाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने ये कहा कि अगर होता तो मैं अफगानिस्तान से लीड करता, क्योंकि तो यहाँ पर ये स्टोरी थी। तो ये एक उनका ये जो कहना था, इसको आप आदेश भी मान सकते हैं, पर उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैंने जो स्टोरी सेलेक्ट की उससे आप लीड नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो एक वहाँ पर हम लोगों ने जो माहौल देखा, और साथ में आप कोई इस बात की आज़ादी थी जो आप अपने मैगजीन प्रोग्राम में करते थे, जैसे आपने कल्चर का प्रोग्राम किया, मैंने सिनेमा पर एक पूरी 19 भावों की श्रृंखला बनाई जो कि भारत में मैं अगर कहीं भी होता तो मुझे कभी न मिलती
जी।
तो ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम और साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो एक योग BBC में हमें देखने को मिला, उससे हमने अपने आप को बदला और बहुत कुछ सीखा।
और मैं एक घटना मुझे याद आती है कि मैं आकाशवाणी से आई थी। हाँ, एक बार क्या हुआ कि आकाशवाणी के एक अधिकारी किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में आए हुए थे, तो वो हिंदी परिवार से मिलने आए, कैलाश जी ने सबसे उनकी भेंट कराई और फिर मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो ये कहा कि ये आकाशवाणी से आई हैं, ममता गुप्ता इनका नाम है। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद घूम फिर के वो एक तरफ चले गए और फिर उन्होंने दूर से मुझे उंगली से इशारा किया, ऐसे इधर आओ। आप यकीन कीजिए मुझे इतना अटपटा लगा, क्योंकि मुझे उस बात की आदत नहीं रह गई थी। BBC में काम करने का जो माहौल था वो इतना अलग था, क्योंकि कोई भी अध्यक्ष, कोई भी बॉस आपको इस तरह से आपसे कभी व्यवहार करेगा नहीं। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, और जो कि दिखाता है कि यहाँ के परिवेश में और भारतीय परिवेश में, काम करने के परिवेश में क्या अंतर है। तो ये कि हमने तरह तरह के प्रयोग किए, प्रोग्राम्स किए, और आपने जैसे कहा अलग अलग श्रृंखलाएँ की, बहुत अच्छी। हमारे अध्यक्ष ने उन्हें हमें पसंद किया, उन्होंने हमें पूरी स्वतंत्रता दी कि आप किस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं करिए, हमें प्रोत्साहन दिया। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे अंदर जिम्मेदारी भी आई, पैदा हुई, और उसकी ज़रूरत थी। तो हमने कैसे सीखी ये संपादकीय जिम्मेदारी, जिसे एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं विजय भाई?
ये तो ममता जी बड़ा मुश्किल सवाल है, कुछ ऐसा ही जैसे साइकिल चलाना आपने कैसे सीखा। यहाँ की जो एडिटोरियल वैल्यूज थी वो आत्मसात करनी पड़ती थी।
हाँ।
और आपको आंखों से और कानों से बहुत सजग रहना पड़ता था। और हमको आते ही सबसे पहले कैलाश जी ने ये कहा कि एक बहुत सस्ता सा ट्रांजिस्टर खरीद लिए, जो उस समय 5 पाउंड का या 3 पाउंड 99 पेंस का आता था, और सुबह जब उठेंगे तो आप पहले वर्ल्ड सर्विस न्यूज़ सुनेंगे, शाम को जब आप सोएंगे तो वर्ल्ड सर्विस न्यूज़ सुनेंगे, और दिन में तो आपको सारे दिन में इस माहौल में रहना ही होता था। इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लेकिन सारी दुनिया हमारी नज़रों में रहती थी और हमको सारी जानकारी उसकी रहती। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ग्राउंड था। दूसरे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अलावा हमको मैगज़ीन प्रोग्राम करने के मिलते थे। तो जैसे खेल और खिलाड़ी, पहले कुछ सालों में मैंने खेल और खिलाड़ी किया, बाद के सालों में मैंने फिर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ किया, जब काम सांस्कृतिक चर्चा करते थे, कला और साहित्य में गहरे बैठने इनको मौका मिलता था। तो कहने का मतलब ये नहीं केवल हम केवल रूखी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें जो मानवता की जो सौंदर्य विधाएं थी उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। इमेजिन, सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला
जी।
और तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सचिन तेंदुलकर कभी दुनिया का सबसे महानतम बल्लेबाज बनेगा। तो इस तरह की संभावनाएं बहुत ही करीब करीब मैंने 7 या 8 प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू किया, मोरारजी देसाई से लेकर नरेंद्र मोदी तक का, 3 जो दफ्तर में ऑफिस में थे। तो ये सारी संभावनाएं थी। हम रोज़ कम से कम 2 या 3 जो न्यूज़ मेकर्स होते थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो कहना चाहिए न्यूज़ क्रिएट करने वाले, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, लगातार प्रणब मुखर्जी, लगातार इन लोगों के इंटरव्यू, फारूक अब्दुल्ला, मुझे ध्यान है फारूक अब्दुल्ला को जब पहली बार इंटरव्यू किया गया, 80s की बात है late 80s की बात, तो उन्होंने कहा मेरे मुल्क हिंदुस्तान में। तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आई कि हम तो समझते थे कि फारूक अब्दुल्ला वो हैं जिनका एक पांव पाकिस्तान में रहता है। तो पहली बार हमें पता चला कि हाउ मच इंडियन ही इज।
यस शिव, आप क्या कहेंगे हमारी संपादकीय जिम्मेदारी के बारे में?
मेरा अनुभव ये है कि देखिए, कार्यक्रम बनाने की आपको पूरी आज़ादी थी, लेकिन उससे पहले संपादकीय बैठकें होती थी। और वहाँ एक तरह की आपको अपने विचारों को कि आप किसी कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से बना रहे हैं उसके लिए बहस करनी पड़ती थी। तो वो एक संपादकीय जुझारूपन जो है वो उन बैठकों में आपको सीखने को मिलता था, और ये तय था कि आपका बॉस बैठा है या आपके साथ काम करने वाला बैठा है या बाहर से आया हुआ दर्शक बैठा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात रखेंगे, आपकी बात मानी जाए नहीं मानी जाए। कई बार ये होता था कि आप किसी बड़े भारी विचार को लेके आए कि आज मैं जाऊंगा और इस विषय से लीड करूंगा और इसमें ये मतलब इस विषय को ट्रीट करने का मेरा तरीका होगा। पता चला कि पूरी बहस में इतने सारे विचार आए कि आपका आइडिया जो है वो चला गया कहीं कहीं और आप कुछ और करने बैठते हैं। तो ये भी होता था, और कई बार ये भी होता था जो कि हमने बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे कि हम पूरी तैयारी करते थे, सब कुछ करते थे, और लेकिन घटनाएँ जो है समय किसी का इंतजार नहीं करता, घटनाएं इतनी बड़ी हो जाती थी कि हमको सब कुछ छोड़ करके और सब कुछ लाइव करना पड़ता था। ऐसा भी हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा पत्रकारिता का एक नियम जो हमें सिखाया गया वो ये था कि निष्पक्ष हों, और कोई भी कहानी हमें ये देखना पड़ता था कि वो विवरण दोनों पक्ष की तरफ से हो, ऐसा ना हो कि एक कहानी हो और दोनों पक्ष ना हो।
ममता जी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा था जो शिव जी ने और कैलाश विजय जी ने कही
जी।
मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट अफेयर्स और समाचार की जो हम लोग कार्यक्रम करते थे उससे एक टेम्परामेंटल चेंज सब में आता था कि एक सजगता, केवल स्टूडियो के अंदर आप जब आजकल कर रहे हैं तभी नहीं, बल्कि आप हर दिन आप में एक समाचारों के प्रति सजगता आ जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन आप आजकल करते थे तो दूसरे दिन आप सांस्कृतिक चर्चा करते थे, तीसरे दिन मैं फिल्म का प्रोग्राम करता था। तो हर जो प्रसारक है उसको हर तरह के अनुभव हर दिन होते थे
जी। हमने वो समय भी देखा है जब हिंदी सेवा के 4 करोड़ श्रोता हुआ करते थे। वो पत्रों का ज़माना था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हमें श्रोताओं के सैकड़ों पत्र हर सप्ताह मिला करते थे। एक पूरा विभाग था जो वो पत्र सॉर्ट आउट किया जाता था और हमें वो पत्र भेजे जाते थे।
पत्रों की बात चली ममता जी, उसका आलम ये था कि मुझे याद है 92 में अर्थ समिट हुई थी
जी,
और पर्यावरण की एक श्रृंखला करने को मुझे दी गई, और उस वक्त कमलनाथ पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। तो मैंने कमलनाथ जी को कहा कि आप लंदन अगर आप आएँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टूडियो में आएँ, और मैं अगर आप माने तो अपने अपने इलाके में जिन जिन लोगों की जो पर्यावरण संबंधी शिकायतें हैं वो अपने श्रोताओं से मंगवाता हूँ, क्या आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? वो तैयार हो गए उस वक्त।
अच्छा।
और वो लंदन के स्टूडियो में आए, 2 घंटे जूझते रहे, और उनको करीब करीब 1000 से ऊपर चिट्ठियां आ गई थी। तो 1000 तो नहीं, लेकिन उन 2 घंटे में जितनी शिकायतों के वो जवाब दे सके उन्होंने जवाब दिए बैठ करके। तो वो ज़माना था, आप पत्रों की बात करती हैं, तो श्रोताओं की जो शक्ति थी, श्रोताओं की जो ताकत थी उस वक्त, तो वो असली हमारी जो है वो कसौटी होता था कि हमारा कार्यक्रम सही था, निष्पक्ष था, जिन मानदंडों पर हम कार्यक्रम बनाना चाहते थे उस पर खरा उतरा कि नहीं उतरा, अंततः श्रोता तय करता था।
मुझे याद आता है कि हमें ये सिखाया जाता था कि स्क्रिप्ट ऐसे लिखें कि एक पन्ने पर सीधे पन्ने पर लिखें और उसके उल्टे पन्ने पर ना लिखें, जिससे एक एक पन्ना आप हटाते जाएं और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते जाएं। एक घटना मेरे साथ हुई कि मुझे याद नहीं, मैं न्यूज़ कर रही थी या कोई डिस्पैच पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैंने जो पन्ना हटाया पहला, तो उसके बाद जो पन्ना था वो सफ़ेद, उस पर एक अक्षर लिखा हुआ नहीं और मेरे तो काटो तो खून नहीं, मैं इतना घबरा गई, मैंने कहा क्या करूँ अब। फिर मुझे 1-2 सेकंड में ख्याल आया कि इसको हटाओ, उसके नीचे जो कागज़ है शायद उस पर कुछ लिखा हुआ। गलती ये हुई थी कि वो गलती से वो पन्ना उल्टा रख दिया गया था और ये घटना हो गई। तो इस तरह के अनुभव हम सबके हैं।
मैं एक किस्सा ज़रूर सुनाऊंगा जिससे मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ज़रूर सुनाइए।
ओंकार नाथ श्रीवास्तव ओंकार जी आजकल प्रेजेंट कर रहे थे और परवेज़ आलम उनके साथ भाग लेने वाले थे। मैं मेरा पहला या तीसरा समाचार था जब मैं बीबीसी में आया था 88 में, तो उस जमाने में साउथ ईस्ट विंग हुआ करता था,
बुश हाउस के अलग अलग ब्लॉक्स,
हाँ, तो वहाँ जाकर के न्यूज़ करनी पड़ती थी और वहाँ पर एक एडिटर होता था, तो वहाँ न्यूज़ मैंने की और 1:45 बजे वहाँ से हम लोग निकल जाते थे क्योंकि 2 बजे ट्रांसमिशन होता था। तो हुसैन शाहिदी वो एडिटर थे, तो मेरे पास आए, कहने लगे 1:45 बजे कहने लगे, ललित ऐसा है कि एक ऐसी न्यूज़ आ गई है, आप वो अपनी बाद वाली न्यूज़ हटा के इसको ले लीजिएगा। अब वो एक तरह का आदेश था, तो मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा कर लूँ जल्दी से, और देखा जब मैंने उसको पूरा किया तो 2:05 रह गया था। और उधर क्या हो रहा था कि बाद में मुझे पता लगा ओंकार जी ने प्रोग्राम शुरू कर दिया और कहने लगे, उन्होंने कॉफ की दवा कहा, भैया वो आया नहीं। अच्छा, इधर मैं जब नीचे पहुंचा तो वो लिफ्ट, क्योंकि उस समय 2 लिफ्ट थी हमारे सेंट्रल ब्लॉक में, तो 1 लिफ्ट ख़राब थी और लंच का टाइम था और मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा अगर मैं भाग के सीढ़ी से जाऊंगा तो मैं हाफ जाऊंगा। तो किसी तरह मैं पहुंचा तो ओंकार जी ने परवेज को कहा कि भाई जाओ उसको जाके ढूंढो। तो परवेज आलम खोल के बाहर आए जैसे ही, तो उन्होंने देखा मैं लिफ्ट से निकल रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भाग के अंदर गए। उनको ये बताना था परवेज को कि भाई वो आ गए हैं ललित, तो परवेज ये भूल गए कि अंदर वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रहा है। परवेज ने धक्का मार के दरवाज़ा खोला और कहा आ गया, ललित आ गया। और वो सारा ट्रांसमिशन में चला गया। और उसके बाद मैं आया, मैंने किस तरह से हाफ के समाचार पहले पढ़े ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है।
अच्छा, तो चलते चलते हम लोग जो जो अपने विचार देना चाहें संक्षेप में आप सबसे मैं निवेदन करूंगी।
एक तो कुछ देर पहले फिल्म की ललित ने बात की, उससे मुझे अब ध्यान आ रहा है, एक फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के एक छात्र थे, उनका नाम था गणेश गायकवाड़
जी।
आपको याद हो वॉइसेस अक्रॉस ओशंस, ये उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बीबीसी हिंदी सर्विस पे, 2005 की बात है। वो आए डॉक्यूमेंट्री बना के ले गए, वो केवल सांस्कृतिक चर्चा को याद करते हुए आए थे, उनके दिमाग में वही एक कार्यक्रम सबसे ऊपर था। और जब उन्होंने वहाँ उसको सबमिट किया तो उसको उस साल का फिल्म फेयर स्वर्ण कमल अवार्ड मिला था। अब जाहिर सी बात है वो उनकी दक्षता के लिए, उनकी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के लिए मिला था, लेकिन विषय वस्तु बीबीसी हिंदी सर्विस थी। तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ जो है ये महत्व रखती है। ये आवाज़ बंद हो रही है, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। ठीक है, हम लोगों की आवाज़ तो काफ़ी पहले बंद हो चुकी है, लेकिन बीबीसी हिंदी की आवाज़ अब बंद होने वाली है। जो चुप हुए तो पुकारेगी हर सदा हमको,
जो चुप हुए तो पुकारेगी हर सदा,
जो चुप हुए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी जबानों से हम बयां होंगे।
वाह वाह, क्या बात है। विजय भाई आप कुछ कहना चाहेंगे?
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी पिछले वर्ष की बात है, मैं नोएडा के किसी बड़े दफ्तर में सरकारी कामकाज से गया था, वो काम हो नहीं रहा था, तो मैं वहाँ जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनके दफ्तर में पहुँचा और मैंने कहा सर मैं लंदन से आया हूँ, तो वो मुझे जानते थे और उनके एक मित्र जो बैठे हुए थे उन्होंने जो किस्सा बताया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा देखिए सर मेरा नाम है विश्व दीपक और मेरे भाई का नाम है भारतेंदु,
अरे
और मेरे पिता ने ये दोनों नाम बीबीसी हिंदी सर्विस उनके रखे थे।
क्या बात है, क्या अच्छी बात है,
इसी वर्ष की बात है,
बहुत अच्छी बात है। ललित
ममता जी, मैं तो बीबीसी को याद करूंगा या बीबीसी की महत्ता को इस तरह से रखूंगा कि एक इंसान जो 1988 में लखनऊ से आया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जिसका नाम ललित मोहन जोशी था, वो यहाँ 20 साल काम करने के बाद कितना बदला और आज वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, फिल्म इतिहासकार है। ये सारी नींव बीबीसी हिंदी सेवा ने रखी और उसका मैं ऋणी रहूँगा कि मुझे एक दूसरा इंसान बनाया बीबीसी हिंदी सेवा ने।
बहुत बहुत सुंदर। तो यूँ तो हमने आपसे कई साल पहले विदा ले ली थी हम सपने, लेकिन आज आपसे अंतिम बार विदा ले रहे हैं विजय राणा, शिवकांत, ललित मोहन जोशी और मैं ममता गुप्ता। नमस्कार।
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 आज की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के आज दूसरे दिन बेलूर मठ का दौरा किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छात्रों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार का पक्ष रखा और इसका बचाव किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के उप विदेश मंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। शहरयार आलम ने एक कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया। यूक्रेन विमान को मार गिराने के मामले में ईरान के नेताओं पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का दबाव बन रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दाश समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।